بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤ صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کاریکرم کا آرمبھ ہم پوتر قرآن مجید کی تلاوت ایوم انواع سے کریں گے۔ آج آپ قرآن مجید کے سورہ اسراء کی 13، 14، 15 اور 16 آیتوں کی تلاوت اور انواع سنیں گے۔ قاری ہیں شری رفیع۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور ہر منوش کا کرم پتر ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، اور پرلے کے دن اسے ایک کھلی ہوئی کتاب کی بھانتی پرستت کریں گے کہ اب اپنی کتاب کو پڑھ لو، آج تمہارے حساب کے لیے تم ہی کافی ہو۔ जो कोई मार्गदर्शन प्राप्त करता है वो अपने लाभ के लिए करता है, और जो पथ भ्रष्ट हो जाता है वो भी अपना ही नुकसान करता है, और कोई किसी का बोझ उठाने वाला नहीं है। और हम लोगों को उस समय तक दंड नहीं देते जब तक उनके बीच कोई रसूल न भेज दें, और जब हम किसी बस्ती को विनष्ट करने का इरादा कर लेते हैं तो वहाँ के सुख भोगी लोगों को आदेश देते हैं, जब वे उसकी अवज्ञा करते हैं तो हमारी बात सिद्ध हो जाती है, फिर हम उसे बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकते हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, आज शनिवार है, मुर्दाद की पहली और जुलाई तथा जिलहिज माह की 23 तारीख। कार्यक्रम में आप पहले की तरह समाचार सुनेंगे, फिर राजनीतिक चर्चा होगी, जिसके उपरांत ईरान भ्रमण कार्यक्रम पेश किया जाएगा। सभा के अंत में हम आपको साप्ताहिक कार्यक्रम सुनवाएंगे, उज्जवल भविष्य। तो ये थी श्रोताओं रूपरेखा। हमारे कार्यक्रमों के बारे में क्षमा कीजिएगा, आप हमारे कार्यक्रमों के बारे में अपने विचार हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप मरियम मेहरदादी और कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। मिस्री राजनेता कहते हैं कि अरब नेटो फोर्स के गठन का सपना साकार नहीं होगा। तुर्की के हमले पर इराक ने सुरक्षा परिषद के आपात बैठक की मांग की है। रूस तथा यूक्रेन के बीच एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। क्यूबा का कहना है कि आर्थिक हथकंडे से भी अमेरिका हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
मिस्र के एक राजनेता कहते हैं कि ज़ायोनी शासन के साथ सहयोग करने के बावजूद अरब नेटो के गठन का सपना कभी भी साकार होने वाला नहीं है। मिस्र के पूर्व सांसद तथा राजनीतिक मामलों के जानकार मुस्तफ़ा अल बिक्र ने कहा है कि सऊदी विदेश मंत्री के हवाले से आने वाली यह खबर पूरी तरह से निराधार है कि ज़ायोनी शासन के साथ सैनिक एवं तकनीकी सहयोग करके अरब नेटो बल का गठन किया जाएगा। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि सऊदी विदेश मंत्री की ओर से इस खबर के खंडन के बाद तो इस मुद्दे में अब कुछ रह ही नहीं जाता है। हालांकि इससे पहले रूस के विदेश उपमंत्री ने अमेरिका की अरब नेटो योजना को खतरनाक बताते हुए कहा था कि इसे मध्य पूर्व के देशों में मतभेद फैलाने के उद्देश्य से पेश किया जा रहा है। रूस के विदेश उपमंत्री ने कहा था कि ये अमेरिकी योजना विफल होकर रहेगी। उन्होंने ईरान के विरुद्ध अमेरिका की ओर से अरब नेटो की तैयारी की ओर संकेत करते हुए कहा कि मॉस्को का ये मानना है कि पश्चिमी एशिया के देशों के बीच मतभेद फैलाने के लिए उठाया जाने वाला हर कदम निंदनीय है। अमेरिका ने सन 2017 में ईरान, रूस और चीन से मुकाबला करने के उद्देश्य से अरब नेटो सैन्य बल बनाने की एक योजना तैयार की थी। इस तरह की गतिविधियों का लक्ष्य ईरान के खिलाफ गठबंधन बनाने से ज्यादा अमेरिका की ओर से अरब देशों को अपने जाल में फंसाने की चाल थी।
तुर्की के हमले के बारे में इराक ने सुरक्षा परिषद की आपातकाल बैठक की मांग की है। इराक के विदेश मंत्रालय की ओर से ऐलान किया गया है कि इसे देश के दहोक प्रांत में तुर्की की सैन्य कार्रवाई के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ को आधिकारिक रूप में सूचित कर दिया गया है। इराकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अहमद असाफ ने बताया है कि हमने इससे पहले की इस हमले की शिकायत करके सुरक्षा परिषद में संबंध में आपात बैठक की मांग की है। उनका कहना है कि इसी के साथ इराक ने अपनी भूमि से तुर्की के सैनिकों की तत्काल वापसी, इस हमले के लिए बगदाद से माफ़ी मांगने और हमले से प्रभावित होने वालों को हर्जाना दिए जाने की मांग की है। इस हमले के बाद इराक के लोगों और गुटों की ओर से कड़ी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जा रही हैं। हालांकि तुर्की ने इस आक्रमण की जिम्मेदारी PKK पर डाल दी है। दोहक हमले को लेकर इराक के संसद सभापति मोहम्मद अल हलबूसी की अध्यक्षता में इस समय एक आपातकालीन बैठक इराक की संसद में हो रही है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने दहूक हमले की निंदा करते हुए इस संबंध में तत्काल जांच कराए जाने की मांग की है।
एक इराकी गुट ने तुर्क सेना के अड्डों पर ड्रोन हमले की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है। इराक के दो अज्ञात गुटों ने देश के उत्तर में तुर्क सेना के अड्डों पर ड्रोन हमले की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए चेतावनी दी है कि अगर तुर्क सैनिक इराक से बाहर नहीं निकले तो अगली कार्रवाई तुर्की की सीमा के भीतर अंजाम दी जाएगी। इराकी मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक सराया औलिया अलदम ने तुर्क हमले के जवाब में ड्रोन हमला करने की जिम्मेदारी ली है। एक दूसरे गुट लवा अहरार अल इराक ने भी एक बयान जारी करके तुर्की के सैन्य अड्डे पर रॉकेट हमले की जिम्मेदारी स्वीकार की। तुर्की ने उत्तरी इराक में कुर्द मलेशिया से लड़ने के बहाने अपनी सैन्य चौकियां स्थापित कर ली हैं, जिसे बगदाद अपनी संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताता है। उल्लेखनीय है कि बुधवार को इराक के कुर्दिस्तान इलाके के दहूक जिले में एक पर्यटन स्थल पर तुर्की की गोलाबारी में 11 महिलाओं और कुछ बच्चों की मौत हो गई थी।
रूस और यूक्रेन के अधिकारियों ने काला सागर के रास्ते यूक्रेन से अनाज के निर्यात की अनुमति देने के एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जंग लड़ रहे दोनों पड़ोसी देश विश्व में सबसे ज्यादा खाद्य पदार्थ निर्यात करने वाले देश हैं, लेकिन फरवरी में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से काला सागर से निर्यात का रास्ता बंद हो गया था, जिससे दुनिया भर में खाने की चीज़ों का संकट पैदा हो गया और महंगाई बढ़ गई। इस बीच तुर्की के शहर इस्तांबुल में तुर्क राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की उपस्थिति में यूक्रेन और रूस के अधिकारियों ने एक मिरर समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत यूक्रेन से काला सागर के जरिए अनाज का निर्यात हो सकेगा। रूस का कहना है कि वो समुद्र के रास्ते अनाज की ढुलाई करने वाले मालवाहक जहाजों पर हमला नहीं करेगा। समझौते के तहत यूक्रेन भी कुछ शर्तें मानने को तैयार हो गया है। उसे खाद्य पदार्थ ले जाने वाले जहाज़ों की जांच की अनुमति देनी होगी। जांच की जिम्मेदारी एक तीसरे देश तुर्की की होगी। जांच के दौरान ये देखा जाएगा कि कहीं हथियारों की सप्लाई तो नहीं की जा रही है।
अमेरिका का कहना है कि वो यूक्रेन को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने पर विचार कर रहा है। हालांकि इससे पहले वाशिंगटन ने दूसरे क्षेत्रों तक युद्ध फैलने की आशंका के दृष्टिगत ऐसा करने से इनकार कर दिया था। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन कर्बी का कहना है कि पेंटागन यूक्रेन को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा व्हाइट हाउस ने यूक्रेन को $270 मिलियन से अधिक के हथियार देने की घोषणा की है। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस महीने की शुरुआत में रूसी सेना ने अमेरिका के 4 उच्च गतिशीलता आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम नष्ट कर दिए, जो पेंटागन ने यूक्रेन को सप्लाई किए थे।
अमेरिका सीरिया में लूटमार और गुंडागर्दी बंद करे। चीन इस पर रिपोर्ट के बाद कि सीरिया से चुराए गए तेल को अमेरिका उत्तरी इराक पहुंचा रहा है। चीन ने एक बयान जारी करके वाशिंगटन से कहा है कि वो सीरियाई संसाधनों की लूटमार तुरंत बंद करे। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग बेनबिन ने अमेरिका के इस रवैये को खुली गुंडागर्दी करार दिया। सीरियाई सरकार लगातार इस बात की शिकायत करती रही है कि अमरीकी सैनिक तेल और गेहूँ तस्करी द्वारा देश से बाहर भेज रहे हैं। मांग का कहना था कि इस युद्धग्रस्त अरब देश की 90% आबादी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रही है। इसके बावजूद अमेरिका अपने कब्जे वाले इलाकों में संसाधनों की लूटमार कर रहा है। पिछले ही हफ्ते सीरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी सना ने रिपोर्ट दी थी कि अमेरिकी सैनिकों ने तेल से भरे टैंकरों को देश की सीमाओं से बाहर पहुंचाया है।
क्यूबा के राष्ट्रपति कहते हैं कि देश की आर्थिक व्यवस्था को ध्वस्त करने की अमरीकी चाल पूरी तरह से विफल हो गई। मिगुल डाइज कानेल के अनुसार अमेरिका की सरकार ने अपनी नई चाल के अंतर्गत क्यूबा के आर्थिक सिस्टम को नष्ट करने का प्रयास किया था जो कामयाब नहीं हो पाया। क्यूबा के राष्ट्रपति का कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अमरीकियों ने देश में आर्थिक संकट के दौरान एक सामाजिक विस्फोट करने का भरसक प्रयास किया जो विफल रहा। उन्होंने कहा कि कैरेबियन राष्ट्रों के विरुद्ध वाशिंगटन आर्थिक दबाव को एक हथकंडे के रूप में प्रयोग कर रहा है। उनका यह भी कहना है कि क्यूबा को आतंकवाद का समर्थक सिद्ध करने के लिए अमरीकी विदेश मंत्रालय के पास कोई भी तर्क नहीं है। ऐसे में वे अपने दावों को सिद्ध करने के लिए निराधार आरोपों को गढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन निराधार दावों के दुष्परिणाम भी सामने आएंगे। क्यूबा के राष्ट्रपति कहते हैं कि देश के प्रतिरोध ने दिखा दिया है कि अमेरिका आर्थिक कार्रवाइयों को विश्व के स्वतंत्र देशों के विरुद्ध हथकंडे के रूप में प्रयोग कर रहा है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाएगा। उनका कहना था कि हमको प्रतिबंधों को अवसरों में बदलने की कोशिश करनी चाहिए।
एक इसराइली ज़ायनी पत्रकार को पवित्र धार्मिक शहर मक्का में प्रवेश की अनुमति देने की दुनिया भर में चर्चा हो रही है और मुसलमान सोशल मीडिया पर इसकी निंदा कर रहे हैं। यमन के जन आंदोलन अंसारुल्लाह के राजनीतिक कार्यालय ने एक बयान जारी करके इस घटना की कड़ी निंदा की है। गौरतलब है कि सऊदी अरब के दो पवित्र धार्मिक शहरों मक्का और मदीना में गैर मुस्लिमों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। इसराइल के चैनल 13 के टीवी पत्रकार गेल तामरी ने मक्का में जाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जबकि उनका प्रवेश मक्का में प्रतिबंधित था। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद व्यापक आलोचनाओं का सामना कर रहे सऊदी शासन ने अब एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस व्यक्ति पर जानी पत्रकार को मक्का में प्रवेश करने में मदद करने का आरोप है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो दिन अब दूर नहीं जब देश की जनता सड़कों पर निकल आएगी। इमरान खान ने ट्वीट करके कहा है कि पिछले 30 वर्षों में पाकिस्तानी जनता से लूटी गई गैर कानूनी संपत्ति को बचाने में शरीफ और जरदारी माफिया लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि 3 महीनों से कुछ अधिक समय के भीतर इस माफिया ने पाकिस्तान को राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से दिवालिया बना दिया है। इमरान का कहना है कि देश के संस्थान कब तक उनको इस बात की अनुमति देते रहेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां तक मैं जानता हूं, देश की जनता अब इन माफिया को अधिक लूट खसोट करने का मौका नहीं देगी। इमरान खान ने ट्वीट के अंत में लिखा है कि श्रीलंका जैसी स्थिति से पाकिस्तान अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इससे पहले इमरान खान ने चेतावनी दी थी कि अगर हमारे मैंडेट को चुराने की कोशिश की गई तो फिर पाकिस्तान को श्रीलंका के रास्ते पर जाने से कोई भी रोक नहीं सकता।
केंद्रीय एशिया में पड़ रही भीषण गर्मी ने पिछले 78 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यूरोप में गर्मी के रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। वहां के कई देशों में भीषण गर्मी के कारण हाहाकार मचा हुआ है। कई यूरोपीय देशों में जंगलों में आग लगने का क्रम भी चल रहा है। यूरोप में हीट वेव के चलते जंगलों में अनियंत्रित आग लग रही है। यूरोप में इस भीषण गर्मी के कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग मौत का शिकार हुए हैं। इसी बीच केंद्रीय एशिया के कुछ देशों में तापमान 47 से 49 डिग्री तक पहुंचा है। फार्स न्यूज़ के अनुसार सन 1944 में दक्षिणी ताजिकिस्तान में तापमान 47 डिग्री हो गया था, जो अपने आप में वहां के लिए रिकॉर्ड था। कई दशकों के बाद अब वहां पर भीषण गर्मी के कारण तापमान 47 डिग्री को पार कर चुका है। इसी के साथ रेडियो तेरान से समाचार समाप्त हुए।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
दोस्तों, मैं हूं रविश जैदी और आपका स्वागत है राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे यूक्रेन की तबाही की असल वजह के बारे में।
दुनिया में इस समय 195 देश हैं
और फिर बात करेंगे तालिबान शासन को मान्यता देने के लिए विश्व समुदाय क्यों किसी जल्दबाजी में नहीं है इसके बारे में।
अफगानिस्तान के मामलों में यूरोपीय संघ के दूत का कहना है कि।
और अंत में चलेंगे भारत और बात करेंगे कश्मीर की के जहां अभी चुनाव की घोषणा तो नहीं हुई है लेकिन गतिविधियां तेज हो गई हैं।
जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के।
तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रूस और यूक्रेन के मध्य जारी युद्ध के बारे में। आखिर ऐसी क्या वजह है कि रूस को यूक्रेन के खिलाफ विशेष सैन्य अभियान शुरू करना पड़ा, इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी मोहम्मद मेहंदी।
दुनिया में इस समय 195 देश हैं और इनमें से बहुत से देश अपनी कुछ विशेषताओं के लिए मशहूर हैं। जैसे जापान इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने के लिए मशहूर है, उसी तरह अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी दादागिरी, दूसरे देशों पर हमला करने और युद्ध उन्मादी कार्रवाइयों के लिए मशहूर है। अब ये बात लगभग पूरा विश्व जनमत समझने लगा है कि जहां भी अमेरिका होगा वहां शांति नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि अशांति ही अमेरिका की उपस्थिति का रहस्य है और इसी बहाने वो दूसरे देशों में रहता है। जिस देश में अमेरिकी सैनिक तैनात रहते हैं, अगर वहां शांति स्थापित हो जाए तो अमेरिकी सैनिकों के रहने का बहाना व औचित्य ही खत्म हो जाएगा। आज पूरी दुनिया में जहां जहां लड़ाई और अशांति है, उनमें से अधिकांश लड़ाइयों व अशांतियों में अमेरिका की परोक्ष व अपरोक्ष भूमिका है। आज विश्व के विभिन्न देशों के अधिकारी और लोग अमेरिका पर युद्ध उन्मादी होने का आरोप नहीं लगा रहे, बल्कि दो शताब्दी से अधिक का समय बीत रहा है जब से खुद अमेरिकी अधिकारी व राजनेता इस देश के युद्ध उन्मादी और अति ग्रहणकारी होने को स्वीकार रहे हैं। 4 साल पहले अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनी वार्ता में कहा था कि 16 साल को छोड़कर अमेरिका का पूरा इतिहास युद्ध से भरा है। 11 सितंबर की घटना को आधार बनाकर अमेरिका ने 2001 में हमला करके अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और 2003 में इराक का अधिग्रहण कर लिया। अमेरिका ने आतंकवाद से मुकाबला करने और शांति स्थापित करने के बहाने अफगानिस्तान पर हमला किया था, परंतु 20 वर्षों तक अमेरिकी और नेटो सैनिकों के अफगानिस्तान में तैनात रहने के बावजूद इस देश में शांति स्थापित नहीं हो सकी। यही नहीं, अफगानिस्तान में मादक पदार्थों की खेती और तस्करी में भी ध्यान योग्य वृद्धि हो गई और रोचक बात यह है कि विदेशी सैनिक जिन क्षेत्रों में तैनात थे वहां मादक पदार्थों की खेती और तस्करी दोनों में अधिक वृद्धि हो गई। अमेरिका ने सामूहिक विनाश के हथियारों से मुकाबले के बहाने इराक पर हमला किया था और उसके हमले में और अमेरिकी सैनिकों की तैनाती के दौरान 10,000 इराकी मारे गए, परंतु आज तक वहां से सामूहिक विनाश के हथियार नहीं मिले और न कोई इसकी बात करता है। केवल अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका की अगुवाई में विदेशी सैनिकों की तैनाती के दौरान करीब 1,00,000 लोग हताहत व घायल हुए हैं और कभी भी ये बात नहीं की जाती कि इन हत्याओं का जिम्मेदार कौन है। यूक्रेन और रूस के मध्य जो युद्ध हो रहा है उसमें भी अमेरिका आग में घी डालने का काम कर रहा है। अब अमेरिका यूक्रेन को युद्धक विमान देने के बारे में सोच रहा है। अब तक वो विभिन्न प्रकार के हथियारों को यूक्रेन को दे चुका है। बहुत से जानकार हलकों का मानना है कि यूक्रेन युद्ध वास्तव में रूस के साथ नहीं है, बल्कि ये युद्ध रूस और अमेरिका और नेटो के बीच हो रहा है और अमेरिका और उसकी अगुवाई में पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियारों के भेज रहे हैं। सारांश यह कि अमेरिका और पश्चिमी देश जहां यूक्रेन रूस के मध्य जंग के लंबा खींचने का कारण है, वहीं यूक्रेन की तबाही इन्हीं देशों के क्रियाकलापों का परिणाम है।
और अब चर्चा करते हैं तालिबान को अब तक न मिलने वाली मान्यता के बारे में। ऐसे क्या कारण हैं कि दुनिया भर के देश अफगानिस्तान में तालिबान शासन को मान्यता देने से बच रहे हैं? इस बारे में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी सैयद मीसम।
अफगानिस्तान के मामलों में यूरोपीय संघ के दूत का कहना है कि विश्व समुदाय फिलहाल तालिबान की सरकार को औपचारिकता प्रदान नहीं करने के अपने फैसले पर अटल है। अफगानिस्तान के लिए यूरोपीय संघ के राजदूत एंड्रियास वॉन ब्रांस ने कहा है कि इस देश में लोकतंत्र की स्थापना और एक राष्ट्रीय समावेशी सरकार के गठन की जरूरत है ताकि तालिबान की सरकार को मान्यता प्रदान की जा सके। अफगानिस्तान की जनता के लिए विश्व समुदाय की सहायता के जारी रखने पर बल देते हुए ब्रांस ने कहा, अफगान जनता को मदद की सख्त जरूरत है, लेकिन ये मदद तालिबान के हाथ नहीं लगनी चाहिए। यूरोपीय संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, इस देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखते हुए विश्व समुदाय में इस बात पर सहमति है कि तालिबान शासन को औपचारिकता प्रदान नहीं की जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अफगानिस्तान के लिए वैश्विक सहायता रोक दी जाए। यूरोपीय संसद के सामने दिए गए यूरोपीय संघ के राजनयिक के बयान से ये बात स्पष्ट हो गई है कि पश्चिमी देश और दुनिया के अन्य क्षेत्रों में उनके सहयोगी तालिबान के शासन को आधिकारिक रूप से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। यूरोपीय संघ द्वारा स्पष्ट रूप से अपना पक्ष रखने से तालिबान को भी चिंतित होना चाहिए। वास्तव में यूरोपीय संसद ने अपने राजदूत को पिछले एक साल में तालिबान शासन के दौरान अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण के लिए आमंत्रित किया था। अफगानिस्तान से अमरीका के सैनिकों के निकलने के बाद तालिबान ने पिछले साल अगस्त में काबुल की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। हालांकि विश्व समुदाय ने तालिबान शासन को मान्यता प्रदान नहीं की है। विश्व समुदाय का कहना है कि तालिबान देश में एक समावेशी सरकार का गठन करें और महिलाओं समेत अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान करें तो उनके शासन को औपचारिकता प्रदान करने के लिए कदम आगे बढ़ाया जा सकता है।
और अब रुख करते हैं भारत का और बात करते हैं कश्मीर में लगातार चुनाव की बढ़ती मांग के बीच इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ये साफ कर दिया है कि वो किस किस से हाथ मिला सकते हैं। वहीं अपनी पार्टी के प्रमुख ने गुपकार गठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। इस बीच कश्मीर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर डॉक्टरों के संघ के महासचिव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं श्रीनगर से हमारे संवाददाता सिप्ते मोहम्मद हसन।
जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उप अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि आने वाले विधानसभा में वो उन लोगों के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं जो कश्मीर की एकता पर यकीन रखते हैं। श्रीनगर में अपने एक वक्तव्य में उन्होंने कहा कि पीएजीडी का जो गठन हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि जो हमारे विशेष अख्तियार छीने गए हैं उन्हें वापस करना होगा। उन्होंने कहा कि जो इस मामले में हमारा साथ देगा हम आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका साथ देने के लिए भरपूर तैयार हैं। यहां ये बात उल्लेखनीय है कि पीएजीडी जिसमें कई दल शामिल थे अब चार दल ही बाकी रहे हैं जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल है। बाकी दलों ने इस गठबंधन से दूरी अख्तियार की है। इधर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि इन लोगों ने पिछले 70 वर्षों से लोगों को कुछ नहीं दिया है और जो भी हम वादे करेंगे वो हम पूरे करेंगे। उन्होंने कहा कि दफा 370 हो या 35 है इसके हवाले से या तो ये सुप्रीम कोर्ट वापस दे सकता है या भारत का लोकसभा। उन्होंने कहा कि हम अपना अभियान जारी रखेंगे परंतु जो हमें हासिल करना है वो सिर्फ और सिर्फ नई दिल्ली से। इस बीच जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के केसेसों में एक बार फिर उछाल आया है परंतु जम्मू कश्मीर डॉक्टर्स एसोसिएशन के महासचिव ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि अब ये एक आम फ्लू बन गया है।
अब केस काउंटिंग का कोई मतलब ही नहीं है। کیونکہ COVID-19 اب اینڈیمک ہو گیا ہے. دیٹ مینز یہ عام جس طرح باقی زکام وائرسز ہے, انفلوئنزا وائرس ہے, اسی طرح اب COVID-19 بھی ایک وائرس ہمارے ساتھ اب رہے گا. اور یہ کیسز جب کوئی چیز اینڈیمک ہو جاتی ہے, دیر ول بی رائز آف کیسز, دیر ول بی فال ان کیسز آلسو. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, اٹ ول بی اے روٹین اینڈ اٹ ول کیپ آن ہیپننگ. اور اس کیس کاؤنٹنگ کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے, کیونکہ جب آپ کو کوئی چیز اینڈیمک ہو جاتی ہے یا کمیونٹی میں آ جاتی ہے اور رہ جاتی ہے, تو آپ کو یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹریک ایچ اینڈ ایوری کیس, یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹیسٹ ایوری بڈی. آپ کی وسادت سے میں لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیسز کا کوئی مطلب نہیں ہے, اور یہاں کی سرکار کو بھی کہ آپ کیس کاؤنٹنگ مت کرو, آپ فوکس کرو ہاسپٹلائزیشنس پہ, آپ فوکس کرو ہائی رسک گروپس پہ, اگر ان کو کووڈ ہوتا ہے ان کو کیسے مینیج کریں گے آپ, کیونکہ اب یہ فیز آ گیا ہم کو کہ معمولی سا زکام ہو جائے گا, وہ ایک دو دن خود ٹھیک ہو جائیں گے, کیونکہ سارے لوگ ویکسینیٹڈ ہیں, لگ بھگ بہت سارے لوگوں میں نیچرل انفیکشن سے امیونٹی آ گئی ہے, اس لیے خاصا امیونٹی ہے کووڈ کے خلاف, اور کووڈ اب کوئی نئی ویو نہیں کرے گی. اٹ ہیز کم ٹو این سیٹل ڈاؤن ایز اینڈیمک, اس لیے لوگوں کو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. تو ہاں, ویکسینیشن جنہوں نے نہیں کیا ہے دے شوڈ گیٹ ویکسینیٹڈ, بوسٹر ڈوز جو ڈیو ہیں دے شوڈ گیٹ. اور میرا یہ ماننا ہے کہ اب جس طرح فلو ویکسین ہم ہر سال کرتے ہیں, اسی طرح سے ہمیں, مجھے لگتا ہے کہ مے بی ان اے ایئر اور ٹو COVID-19 کے خلاف بھی ہم کو اینول بوسٹر ڈوز کرنا پڑے گا. دیکھو, ماسک از اسٹل این آپشنل. جب کوئی چیز اینڈیمک آ جاتی ہے, اٹ ول بی این آپشنل تھنگ. کہ یہ کوئی کہ ہم کیس کاؤنٹنگ پہ ریسٹرکشنز پھر سے نہیں کر سکیں گے, کیونکہ اٹ از ناٹ اے پیرامیٹر ناؤ. پیرامیٹر اگر ہے ریسٹرکشنز لگانے کا, وہ ہاسپٹلائزیشن ہے. ایز آف ناؤ دیر از زیرو ہاسپٹلائزیشن.
انہوں نے لوگوں سے سیم برتنے کا بھی آہوان کیا, پرنتو انہوں نے کہا کہ اب اس وبا کے ساتھ جینا ہی ہوگا. سپتی محمد حسن, ریڈیو تہران, سری نگر.
श्रोताओं, राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है.
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. دوستو, اب پیش ہے ساپتاہک کاریکرم ایران بھرمن.
ایران بھرمڑ.
دوستوں, کارکرم ایران بھرمن کی اگلی کڑی کے ساتھ اپستھت ہیں, جس میں کرج نگر کی کچھ دھروہروں کے بارے میں بات کریں گے. سواتی اور سعید میسام کا سلام سویکار کیجیے.
دوستوں, ایران کے لوکپریہ نگروں میں سے ایک کا نام کرج ہے. کرج نگر تہران کے پشچیموتر میں 48 کلومیٹر کی دوری پر استھت ہے. یہ نگر سمندر سدا سے 1297 میٹر کی اونچائی پر استھت ہے. کرج نگر البرز پروت شنگلا کے کیندر میں استھت ہے. کرج نگر اور اس کے ارد گرد کے کھیتر, وشیش کر وہ کھیتر جو کرج ندی کے کنارے استھت ہیں, لمبے سمے سے راجدھانی تہران میں رہنے والوں کے لیے آکرشک استھل رہے ہیں. کرج کے ارد گرد استھت کھیتر 3 الگ الگ بھاگوں میں وبھاجت ہیں.
سن 1933 میں کیسپین ساگر کے تٹ پر تہران کرج ہائی وے کے نرمان اور اسی پرکار پشچمی کھیتر میں قزوین, ہمدان, تبریز اور زنجان کے مدھیہ ہائی وے کے نرمان سے کرج نگر سمپرک کے ایک مہتوپورن سادھن میں پریورتت ہو گیا. راجدھانی تہران سے نکٹ ہونے کے کارن اس نگر کے بھیتر اور اسی پرکار تہران قزوین راجمارگ میں اودیوگک پرتشٹھانوں تتھا کارخانوں کے نرمان کی بھومیکا سمتل ہوئی. اس پرکار راجدھانی کے نکٹ استھت کرج نگر کی کھیاتی دن پرتی دن بڑھتی ہی جا رہی ہے.
اسلامی کرانتی کی سفلتا کے بعد اس نگر نے بہت تیزی سے پرگتی کی, اور اس پرکار سے کہ آج کرج اودیوگک, شیکشک, ویگیانک, چکتسا سمبندی اور منورنجن کے کھیتر میں پرسدھ اور جانا پہچانا نام سمجھا جاتا ہے. और आज के समय में करज ने इतनी ख्याति प्राप्त कर ली है कि पिछले कई दशक की तुलना में आज के करज से नहीं की जा सकती। पलायन की दृष्टि से तेहरान के बाद करज ईरान का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, जहां पलायनकर्ताओं की संख्या अधिक है। ईरान के अन्य नगरों की तुलना में इस नगर की जनसंख्या के युवा होने के दृष्टिगत इसे ईरान के नए बड़े नगरों में गिना जाता है। वर्तमान समय में तेहरान, मशहद, इस्फहान और तबरेज के बाद करज जनसंख्या की दृष्टि से ईरान का पांचवा नगर समझा जाता है।
करज और उसके आसपास के क्षेत्रों की जलवायु बहुत संतुलित है। यही कारण है कि तेहरान के बहुत से नागरिक अपनी साप्ताहिक छुट्टियां बिताने करज जाते हैं। करज की मनोरम और ठंडी जलवायु तथा सुंदर प्राकृतिक स्थलों के पाए जाने की वजह से इसको पर्यटकों के लिए बहुत ही बेहतरीन स्थान समझा जाता है। इन सबके अतिरिक्त इस नगर के प्राकृतिक आकर्षणों व मूल्यवान धरोहरों ने इसकी सुंदरता में चार चांद लगा दिए हैं। आइए कार्यक्रम के इस भाग में इस नगर की प्राकृतिक धरोहरों के बारे में जानते हैं।
शाह अब्बास के नाम से प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुल, जिसे कई स्थानों पर पुल दुख्तर भी कहा जाता है, लगभग 60 मीटर की लंबाई और 8 मीटर की चौड़ाई से इसका निर्माण नगर के प्रवेश द्वार पर करज नदी पर किया गया है। इस पुल के दो प्रवेश द्वार हैं, जिनको विशेष प्रकार की ईंटों, गारे व चूने से मिलाकर बनाया गया है। इन दोनों प्रवेश द्वारों के बीच में काजारी शासनकाल के दौर का दो मंजिला एक कमरा है, जिसे प्रकाशन केंद्र या मनोरंजन स्थल के रूप में प्रयोग किया जाता है।
विभिन्न यात्रा वृत्तांतों और ऐतिहासिक प्रमाणों से पता चलता है कि ये पुल इतिहास के विभिन्न कालों में मौजूद था, किंतु सफवी शासनकाल में संपर्क को विस्तृत करने के उद्देश्य से मौजूद रूप में अस्तित्व में आया। अलबत्ता बाद के कालों में भी इस इमारत में विभिन्न परिवर्तन और निर्माण कार्य हुए। इस इमारत को वर्ष 2001 में ईरान की राष्ट्रीय धरोहर की सूची में पंजीकृत कर लिया गया। वर्ष 1330 हिजरी शमसी के बाद इस ऐतिहासिक पुल से आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके साथ ही ईरानी इंजीनियरों ने पत्थर का एक अन्य पुल बना दिया और पत्थर से बने हुए इस पुल को भी, जो बहुत मजबूत है, ईरान की सांस्कृतिक धरोहर में पंजीकृत कर लिया गया।
करज में शाह अब्बास के कारवांसरा या धर्मशाला की इमारत पत्थर और ईंटों से बनी हुई है, जिसका क्षेत्रफल 3000 वर्ग मीटर है। ये कारवांसरा सफवी शासनकाल से संबंधित है। इसका निर्माण 1078 से 1109 हिजरी कमरी के मध्य के वर्षों में शाह सुलेमान सफवी के काल में हुआ। यह इमारत अलबुर्ज प्रांत में करज के केंद्रीय भाग में स्थित है। आरंभ में इस इमारत का निर्माण कारवानों के रुकने और उसमें शामिल लोगों के विश्राम के लिए किया गया था। काजारी शासनकाल के आरंभिक वर्षों में इसे सैन्य छावनी में परिवर्तित कर दिया गया। बाद में काजारी शासनकाल के अंतिम वर्षों में इसे फलाहत नामक शिक्षा केंद्र में परिवर्तित कर दिया गया।
कारवांसरा का प्रवेश द्वार उत्तरी भाग में स्थित है और इसके प्रांगण का क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर है। इसमें यात्रियों के विश्राम के लिए 21 कमरे बने हुए हैं तथा कारवा के सामानों को रखने और कारवा की रक्षा पर तैनात सैनिकों के विश्राम के लिए 5 कमरे बने हुए हैं। इस इमारत के निर्माण में पत्थर, ईंट, लकड़ी और भूसा मिश्रित मिट्टी का प्रयोग किया गया है। वर्ष 1977 में शाह अब्बासी कारवांसरा को ईरान की राष्ट्रीय धरोहर की सूची में पंजीकृत कर लिया गया।
करज कृषि कॉलेज को कृषि विज्ञान और इस विषय के बारे में सबसे समृद्ध केंद्र समझा जाता है। इसको करज की प्राकृतिक व ऐतिहासिक धरोहर के रूप में राष्ट्रीय धरोहर की सूची में पंजीकृत किया जा चुका है। ऐतिहासिक प्रमाणों से पता चलता है कि वर्ष 1302 हिजरी शमसी में तेहरान विश्वविद्यालय के कृषि संकाय और करज में ग्रामीण उद्योग और फलाहत कृषि केंद्र का गठन किया गया। ये केंद्र वर्ष 1328 हिजरी शमसी में तेहरान विश्वविद्यालय के एक संकाय में परिवर्तित हो गया।
करज कृषि संकाय के कई विभाग हैं। इसमें मरुस्थल के संबंध में शोध के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र भी है। सुलेमानिया महल जानवरों की पहचान के बारे में एक संग्रहालय इसमें मौजूद है। ईरान में पहले वन संरक्षण विभाग के संस्थापक उस्ताद करीम साई के मकबरे जैसे कई ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल भी इस इमारत में मौजूद हैं। करज नगर में बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां, कारखाने और शिक्षण संस्थाएं मौजूद हैं। करज नगर में पाए जाने वाली संस्थाओं में से एक वैक्सीन एंड सीरम इंस्टीट्यूट है। करज में बना यह शोध इंस्टीट्यूट मध्य पूर्व में अपने प्रकार का एकमात्र केंद्र है। यहां पर प्रतिवर्ष बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के टीके और सीरिंज बनाए जाते हैं।
करज का सुलेमानिया महल ईंटों से बना हुआ है जिसकी छत ढलुआ है। इसको पूर्ण काजारी वास्तुकला की शैली से बनाया गया है। इस इमारत को अपने काल की सबसे सुंदर, सबसे साधारण और सबसे अच्छी इमारत कहा जा सकता है। इस इमारत के निर्माण में ईंटों, गीली मिट्टी तथा लकड़ी की बल्लियों का प्रयोग किया गया है। इमारत का भीतरी भाग और इसके हाल की दीवारों पर बहुत ही सुंदर ढंग से रंग किया गया है। यहाँ की दीवारों और छत पर विभिन्न प्रकार के रंगों और आईनाकारी के साथ ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत ही सुंदर ढंग से इस्तेमाल किया गया है।
सुलेमानिया महल दो मंजिला है। पहली मंजिल के कुछ भाग को महल के सेवा कार्यों से विशेष कर दिया गया है। दूसरी मंजिल पर पहुंचने के लिए अलग अलग दिशाओं में दो सीढ़ियां बनी हुई है। दूसरी मंजिल पर एक केंद्रीय बड़ा हॉल और दोनों ओर कमरे बने हुए हैं जिनको विश्राम के उद्देश्य से बनाया गया है। इस इमारत की सबसे रोचक बात उसका बाहरी वातावरण है। इस प्रकार से कि इमारत में लगी बड़ी और कम चौड़ी खिड़कियों के कारण अंदर से बाहर और बाहर से अंदर के मनोरम और सुंदर दृश्यों को बड़ी सरलता से देखा जा सकता है। इन्हीं खिड़कियों के कारण हॉल में पूरे दिन प्रकाश रहता है जिसके कारण इमारत का भीतरी वातावरण प्रकाशमयी रहता है।
सुलेमानिया महल की इमारत की बनावट बहुत साधारण है। साथ ही इमारत में मौजूद समस्त प्रतीक, वातावरण, गुंबद और सीढ़ियां इमारत के केंद्रीय भाग के बहुत अनुरूप हैं। सुलेमानिया महल की इमारत काजारी शासनकाल की मूल्यवान धरोहर है। राजधानी तेहरान से निकट होने के दृष्टिगत करज पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया है। यही विषय इस क्षेत्र के विकास और प्रगति का कारक बना। काजार शासनकाल के अंतिम वर्षों में करज में फलाहत स्कूल का निर्माण किया गया। इसके निर्माण के कुछ अंतराल के बाद सुलेमानिया महल के निकट कृषि संकाय की पहली इमारत बनाई गई। ये इमारत वर्तमान समय में चर्मपुराण संग्रहालय की इमारत के नाम से प्रसिद्ध है। चर्मपुराण या टैक्सीडर्मी एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत मृत प्राणियों को सुरक्षित रखने तथा उन्हें जीवित सदृश करके प्रदर्शित किया जाता है।
करज और उसके उपनगरीय क्षेत्रों में बहुत से धार्मिक स्थल भी मौजूद हैं। इनके दर्शन करने के लिए प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर उपस्थित होते हैं। इन धार्मिक स्थलों में से एक इमामजादे हसन का मकबरा है। यह मकबरा करज कृषि संकाय के निकट नगर के केंद्र में स्थित है। इस मकबरे के प्रवेश द्वार पर जो शिलालेख लगा हुआ है उसके अनुसार इस इमारत का निर्माण 1500 ईस्वी में शाह तमास्प सफवी के आदेशानुसार किया गया था।
इमामजादे हसन की इमारत भीतर से चौकोर है जिसके हर छोर पर एक ताक बना हुआ है। इमारत के भीतरी भाग में कोई विशेष सजावट नहीं है और केवल ईंट और कुछ स्थानों पर चूने की पुताई देखी जा सकती है। इमारत का बाहरी भाग भी बहुत ही साधारण ढंग से बना हुआ है। कुल मिलाकर इस इमारत के विस्तृत भीतरी वातावरण के दृष्टिगत छत बनाने की शैली बहुत ही महत्वपूर्ण है। इमामजादे हसन के मकबरे की इमारत के बाहरी भाग में भूसे और मिट्टी का प्रयोग किया गया है जिसमें बने लुभावने और आकर्षक ताकों को भली भांति देखा जा सकता है।
इमामजादे ताहिर करज का मकबरा एक अन्य पर्यटन व ऐतिहासिक स्थल है जो ईरान के बहुत से प्रसिद्ध समकालीन कलाकारों और शायरों के दफन होने के स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों, इसी के साथ आशा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दें।
یہ ریڈیو تہران، شمع کیجیے گا، یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. دوستو، ابھی آپ نے کارکرم سنا ایران بھرمڑ، جسے پیش کیا سواتی اور سید میسم نے. اور اب پیش ہے سبھا کا انتیم کارکرم اجول بھوش.
اجول بھوش،
دوستو، کارکرم اجول بھوش کے ایک نکڑے کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہردادی اور محمد مہدی کا سلام سویکار کیجیے. اس کارکرم میں ہم اسلامی کرانتی کی سفلتا کے بعد ایرانی سشستر بلوں کی استھتی کی چرچا کریں گے.
دوستو، پچھلے کارکرم میں ہم نے بتایا تھا کہ سورگی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نیتوت میں اسلامی کرانتی کی شاندار سفلتا کے بعد ایران نے سنچار پردوگیکی کے چھیتر میں نہ کیول آتم نربھرتا حاصل کی بلکہ دنیا کے وکست دیشوں کے استر کی تکنیک تک پہنچ بنائی ہے. کرانتی کی سفلتا کے بعد شاہی ویوستھا اور ودیشی شکتیوں کے ورچسو سے ایرانی سشستر بلوں کی مکتی اور ایرانی راشٹر کے ساتھ ان کے سمبندھ نے ایرانی سشستر بلوں کو اتنی گریما اور ادھیکار پردان کیا کہ وہ ایک اجے سینا بن گئی. اور حالیہ شتابدیوں میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ دشمن نے وشو شکتیوں کے سمرتھن سے ایران پر حملہ کیا لیکن دیش کی ایک بالشت زمین پر بھی قبضہ کیے بنا اسے پیچھے ہٹنا پڑا. اسلامی کرانتی کی سفلتا کے بعد صدام نے پشچم اور پورب کی دو مہا شکتیوں اور یورپی دیشوں کے سمرتھن سے ایران پر حملہ کر دیا تھا اور ایران کو نشٹ کرنے کی قسم کھائی تھی، لیکن ایرانی سشستر بلوں نے جنتا کی سہایتا سے 8 ورشوں تک اپنے راشٹر کی رکشا کی اور دشمن کو اپمان جنک ہار سویکار کرنے پر مجبور کر دیا.
اسلامی کرانتی کے بعد لوگوں نے سوچھا سے اپنے راشٹر کی رکشا میں بڑھ چڑھ کر بھاگ لیا. اسی پریم اور اچھا کے آدھار پر آج ایرانی بل اگری مورچے سے لے کر دیش کے کونے کونے تک سرکشا اور شانتی ویوستھا کو سنشچت بنا رہے ہیں. ایران کے سشستر بلوں کے آتم نربھر ہونے کا وچار کرانتی کی سفلتا کی شروعات میں ہی اس کرانتی کے سنستھاپک امام خمینی نے پیش کر دیا تھا. امام خمینی کا ماننا تھا کہ ایران کو سبھی کھیتروں میں آتم نربھر بننے کے ساتھ ہی رکشا کھیتر اور سینیہ ادیوگ میں آتم نربھر بننا چاہیے. آج دیش میں وبھن پرکار کے حلقے اور بھاری ہتھیاروں کا اتپادن کیا جاتا ہے. ایران توپ، گولے، ٹینک، مشین گنیں، یدھ پوت، میزائل اور وایو رکشا پرنالی تک سب کچھ بنا رہا ہے. پرارمبھک ڈیزائن سے لے کر نرمان، وترن اور سنچالن تک دور سنچار اور وائرلیس اپکرنوں اور الیکٹرانک یدھ اپکرنوں کا اتپادن ایران میں کیا جا رہا ہے.
وبھن پرکار کے ہتھیاروں اور سینیہ اپکرنوں کے نرمان اور اتپادن میں ایران کی پرگتی اتنی آشچرجنک رہی ہے کہ گلوبل فائر پاور سنستھان نے ایرانی سشستر بلوں کو دنیا کے سب سے سکشم سشستر بلوں میں سے ایک قرار دیا ہے. آج ایران کے پاس میزائلوں کو لانچ کرنے کی تکنیک اور چھمتا ہے. ایرانی نوسینا سمندر میں چلتے جہازوں کو پوری سٹیکتا کے ساتھ نشانہ بنا سکتی ہے، وہ بھی کروز میزائل سے نہیں بلکہ بیلسٹک میزائل سے، جو دھن کی گتی سے 8 گنا تیز سے پرتھوی کے وایو منڈل میں پرویش کرتا ہے. یہ سبھی سفلتائیں ایران کے اسلامی کرانت کے بعد ایران کے پرتیبھاشالی یوواؤں کی راشٹر پریمی بھاوناؤں کے ساتھ ہوا ہے، جو یہ وشواس رکھتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں.
ایران کی اسلامی کرانتی کے بعد ہتھیار بنانے والے دیشوں نے ایران کو ہتھیار بیچنے پر پرتیبندھ لگا دیا تھا۔ 1980 کے بعد سے ہتھیاروں کے نرمان میں استعمال ہونے والے کچے مال پر بھی پرتیبندھ لگا دیا گیا، لیکن ایران نے ان پرتیبندھوں کو اوسر میں بدل دیا اور آج وہ نہ کیول ضرورت کا کچا مال تیار کر رہا ہے بلکہ انت ہتھیاروں کا نرمان بھی کر رہا ہے۔ سٹیک سینسر اور نیویگیشن سسٹم، پروسیسر اور میزائل، ڈرون ویمان اور لڑاکو ویمانوں کی اڑان کے کمپیوٹر ایران میں ڈیزائن اور نرمت کیے جا رہے ہیں۔
بیلسٹک میزائلوں کے اتپادن میں ایران نے اچھی پرگتی کی ہے۔ لمبی دوری کے سطح سے سطح پر مار کرنے والے میزائل، سطح سے ہوا میں مار کرنے والے میزائل جیسے کہ اپگرہ کیریئر سفیر، شہاب، سجیل اور کروز میزائلوں نے ایران کو دنیا کے ان گنے چنے دیشوں کی پنکتی میں لا کھڑا کیا ہے جن کے پاس یہ تکنیک موجود ہے۔ اسی طرح سے 1000 کلومیٹر کے رینج کے رڈار کا نرمان اور کئی اپگرہوں کے انترکش میں لانچ کرنے نے ایران کو دنیا کا ایسا ساتواں دیش بنا دیا جس کے پاس اپگرہ کو لانچ کرنے کی پوری تکنیک ہے۔ ایران نے اپگرہوں کے ڈیزائن اور نرمان میں دنیا میں 12واں استھان حاصل کیا ہے اور اس اپلبدھی کے ساتھ ساتھ وہ وشو انترکش کلب کا 11واں سدسیہ بھی بن گیا ہے۔
دوستو، پنڈبی نرمان، جہازوں اور یدھ پتوں کا نرمان اور ان کی مرمت، ہوور کرافٹ نوکاؤں کا نرمان، سپیڈ ناؤں اور اڑنے والی نوکاؤں کا نرمان، وبھن پرکار کے کوچ اور ٹینکوں کا نرمان اور مرمت، اور ہلکے، ارد بھاری اور بھاری ہتھیاروں کے نرمان میں آتم نربھرتا، جیسے کہ آدھونک مورٹار اور توپوں کا نرمان، ویمان بھیدی رکشا پرنالیاں اور ہتھیار، دور سنچار ادیوگوں کا وکاس، وائرلیس سسٹم کا وکاس، سادھارن کیمروں اور نائٹ ویژن کا نرمان اور ان میں سے کچھ اتپادوں کا نریات ایران کو دنیا میں وشیشتا پردان کرتے ہیں۔ ایران کی یہ سینی اپلبدھیاں ایسے سمے میں ہیں کہ جب کرانتی سے پہلے تک دیش پوری طرح سے وشو کی انیہ شکتیوں پر نربھر تھا۔ اسلامی کرانتی سے پہلے ایران کے پاس کسی طرح کی کوئی مثال تکنیک نہیں تھی۔
ایران کے سشستر بلوں کی سفلتا کا راز پرتیبندھوں کو اوسر میں بدلنے میں ہے۔ اسی وشیشتا کی وجہ سے ایران کے سشستر بلوں نے رکشا چھیتر میں دیش کو دنیا کے سب سے شکتیشالی دیشوں کی پنکتی میں لا کھڑا کیا ہے۔ حالانکہ 11 فروری 1979 کے بعد سے ہی ایران کو کڑے پرتیبندھوں کا سامنا رہا ہے۔ کڑے پرتیبندھوں کے کارن دیش کے سنستھانوں نے آدھنک تکنیک حاصل کرنے کے لیے بھرپور پریاس کیے۔ ایران کی ایک وشیشتا یہ ہے کہ اس نے بہت ہی کم خرچ اور کم بجٹ کے ساتھ رکشا کے چھیتر میں یہ اپلبدھیاں حاصل کی ہیں۔ سعودی عرب کا رکشا بجٹ 63.7 ارب ڈالر ہے، جبکہ جرمنی کا 45 ارب ڈالر، جاپان کا 59 ارب ڈالر، کناڈا کا 14 ارب ڈالر ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے چھوٹے چھیتریہ دیشوں، یو اے ای کا 19 ارب ڈالر اور عمان کا 9.1 ارب ڈالر ہے۔ حالانکہ 15 پڑوسی دیشوں اور دنیا کے سنویدنشیل چھیتر میں استھت ہونے کے باوجود ایران کا رکشا بجٹ راشٹریہ سکل گھریلو اتپاد کا کیول 3% ہے۔
اس کارکرم کو ہم اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا کے ایک بیان کے ساتھ ختم کر رہے ہیں۔ ایک اوسر پر انہوں نے کہا تھا کہ ایران کے پاس آج جو کچھ ہے وہ اس سے اپنے سپوتوں کے دم پر حاصل کیا ہے۔ ہم دنیا میں کسی کے سامنے گردن نہیں جھکاتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس دنیا کے آدھونک ہتھیار ہیں، لیکن ہم نے انہیں سمان کے ساتھ حاصل کیا ہے۔ دیش کے یوواؤں کو سمبودھت کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں، آج میں اپنے دیش کے بہادر جوانوں سے کہتا ہوں کہ خود اپنے اوپر بھروسہ کرو، ہم خود پر راستے اور دروازے بند نہیں کر سکتے اور دنیا کے آدھونک تکنیک کے استعمال سے پیچھے نہیں رہ سکتے۔ विज्ञान और तकनीक का संबंध पूरी मानवता से है और कोई भी उस पर अपना वर्चस्व नहीं जमा सकता।
यहाँ दो बिंदु महत्वपूर्ण हैं। पहला बिंदु ये कि हमें सबसे पहले खुद पर भरोसा करना चाहिए। आप लोगों को साहस से काम लेना चाहिए, आपको निर्माण करना चाहिए, आपको महारत हासिल करनी चाहिए। जिस तरह से इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद इस मार्ग में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ने आश्चर्यजनक प्रगति के बारे में कहा था, जिन लोगों को जानकारी है वे जानते हैं कि आज इस्लामी गणतंत्र ईरान के सुरक्षा बलों में शामिल हमारे जवानों के पास जो आधुनिक हथियार और जटिल तकनीक है वो क्रांति से पहले की तुलना में 10 गुना ज्यादा है। आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं। सैन्य उपकरणों के विकास के उद्देश्य के बारे में इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता का कहना है, ये सभी उपलब्धियां क्रांति की सुरक्षा के लिए हैं। इन अनमोल रत्न की रक्षा के लिए जिसे हमने खून देकर प्राप्त किया है, स्वाधीनता की रक्षा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और बड़ी शक्तियों का पिट्ठू नहीं बनना, वो उपलब्धियां हैं जिससे महाशक्तियां नाराज हैं। हम साम्राज्यवाद को किसी तरह का महत्व नहीं देते हैं, उन्हें नाराज होने दो। हम अनगिनत संभावनाओं और प्रतिभा वाले एक महान राष्ट्र है। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, हमारे कार्यक्रमों को आप अपनी सुविधा के अनुसार वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, partstoday.com/hi। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsiribir। तो इसी के साथ रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा की ये सभा अब यहीं पर संपन्न होती है। आपसे अनुमति चाहते हैं। खुदा हाफिज। Thank you.